शांति। सीधा होकर बैठेंगे। बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने ध्यान को लेकर आएंगे इधर सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये जो पॉइंट है एंड द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ये हमारा एनर्जी सेंटर है। और जेंटली जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, बिल्कुल उसी पॉइंट पर आप जेंटली विजुअलाइज करेंगे अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक अ लिटिल स्टार एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, हम उसको जस्ट विजुअलाइज करेंगे। और कुछ नहीं करना है, बस सीधा बैठना। बॉडी है लेकिन फील करना है इसको कि ये मेरा शरीर है और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एनर्जी, वो पावर, वो इस पॉइंट पर बैठी है। और यहाँ से मैं वो शक्ति इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। इस पूरे तीन दिन में हम इसका अभ्यास बहुत बार करेंगे, बार बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन इसको बार बार करना है। जब आप यहाँ आकर बैठेंगे, अगर आप थोड़ा जल्दी आकर बैठेंगे तो उस समय भी इसका ही अभ्यास करें कि शरीर है लेकिन मैं कौन हूँ। इधर सेंटर ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट, इसको अभी देखने की प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अ लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट। अब इन थॉट्स को अपने माइंड में रिपीट करेंगे। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखते जाना है उस पॉइंट ऑफ लाइट को और साथ में थॉट्स को रिपीट करना है। आई एम अ पावरफुल बीइंग, बस एक थॉट क्रिएट करना है, उस थॉट को होल्ड करना है। ओनली वन थॉट, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर कोई और थॉट आता है, रुकना है, वापस अपने थॉट पर जाना है। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, एक थॉट क्रिएट करना है, उसको होल्ड करना है। ओनली वन थॉट एट अ टाइम। I am a peaceful being, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल बीइंग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. ओनली वन थॉट, आई एम अ लवफुल बीइंग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. I am power, I am peace, I am love. फिर से रिपीट करेंगे, I am power, I am peace, I am love. मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ. अब इसको देखेंगे कि जैसे जैसे हम ये थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारे से उस थॉट की वाइब्रेशन हमसे निकलकर बाहर की तरफ रेडिएट करती है. एनर्जी आई क्रिएट, इट रेडिएट्स आउट फ्रॉम मी. तो थॉट हमारी है लेकिन वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी. आज इसको पक्का करते हैं कि अगर हम 2 मिनट निकाल के भी इन पावरफुल थॉट्स को क्रिएट करते हैं, वी आर रेडिएटिंग पीस एंड पावर इनटू द वर्ल्ड. वाइब्रेशन हमसे निकल के चारों तरफ फैल रहा है. ओम शांति. अब आप हर सेशन में जब आएंगे, रेड लाइट ऑन होगी तो उस समय का यूज करिएगा, है ना. आप अपने 3 दिन निकाल कर आए हैं, 4 दिन निकाल कर आए हैं, तो हमें इन 3-4 दिनों में क्या करना है, क्या करना है? 3-4 दिनों में यहाँ से हर चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके लेकर जाना है, लेकर जाना है ना. कुछ भाई बहने आज सुबह आए हैं, कुछ कल आए थे, सब कंफर्टेबल हैं? एवरीबडी कंफर्टेबल? हाथ उठाओ. कंफर्टेबल? कंफर्टेबल. आराम मतलब कंफर्टेबल इन द बॉडी, but it also means comfortable in the mind. कौन कौन मन से comfortable है? तन से हो सकता है कुछ एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तन से हो सकता है ऊपर नीचे चीजें हो जाए, लेकिन मन से comfortable कौन कौन है वो बताओ. हाँ, हम इसी के लिए आए हैं यहाँ. यही कॉन्फ्रेंस हम 5-स्टार होटल में भी कर सकते हैं, वहां आप तन से comfortable होंगे लेकिन मन से वो नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा, है ना. राइट है बात. अगर एक वर्ड में कहें कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, इवन दो यू हार्डली सीन एनीथिंग, कुछ भी नहीं अभी हुआ है, बट किसी भी जगह आकर एक फीलिंग तो आती ही है ना आने के बाद, तो कैसा फील हो रहा है? वन वर्ड, एनीबडी. जी, पीसफुल. हाँ, और पॉजिटिव. अच्छा, और अच्छा ऐसे जा रहे हैं. ओहो, हाँ जी, हैप्पी. अच्छा, किस किस को पीसफुल लग रहा? अरे वाह, फोटो खींचनी चाहिए इसकी तो. वेरी गुड. और फिर हैप्पी भी फील हो रहा क्योंकि पीसफुल होगा तो लाइट फील होगा, राइट, एंड पावरफुल फील होता है. अब ये सोचने की बात है कि अभी अभी तो आप आए हैं, आपने अभी तक कुछ मेडिटेशन सीखा भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, बिना कुछ किए पीसफुल फील हो रहा है, राइट बात है? बिना कुछ किए पीसफुल फील हो रहा है, कैसे? कैसे? वाइब्रेशन से, राइट? तो ये भी ठीक हो गया कि किसी को भी पीसफुल फील कराने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, पीसफुल वाइब्रेशन एनवायरनमेंट बनाकर रखना है। अब आप ये बताइए कि अगर आपके हॉस्पिटल, आपकी क्लिनिक का वाइब्रेशन ऐसा पीसफुल हो, तो आपको लगता है हीलिंग में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? पक्का पक्का? मतलब इलाज नहीं, बीमारी नहीं, इंजेक्शन नहीं, दवाई नहीं, वो सब तो अभी होनी है। अभी आप आए, आपका इलाज तो शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन आते ही पीसफुल लग रहा है। तो ऐसे ही कोई हॉस्पिटल में आए, अभी वो आपसे मिला भी नहीं है, अभी तो प्रिस्क्रिप्शन बनी भी नहीं है, अभी तो उसका डायग्नोस हुआ भी नहीं है, अभी तो दवाई दी भी नहीं है, लेकिन उसको आते ही पीसफुल फील हो, उससे उसके इलाज में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? यस? किस किस को लगता है फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फास्ट हीलिंग, वेरी गुड। तो फिर क्या हमें इतनी सी चीज नहीं करनी चाहिए कि हम अपने हॉस्पिटल के वाइब्रेशंस को ऐसा बना दें? और सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट उस वाइब्रेशन का किसको होगा? देखो, हर एक पेशेंट जो आपके पास आता है, अगर वो रह रहा है तो वो 4-6 दिन रह रहा है, कभी कभी महीना भी रह रहा है, बाकी सब तो आधा घंटा एक घंटा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां कौन रहता है? तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? तो अभी कहो मैं, इसमें हम मैं कहते हैं। मैं एक बहुत रिस्की वर्ड होता है, गलत जगह यूज किया तो वो मैं ही वाइब्रेशन को क्या करता है, नीचे लेकर आता है, और सही तरह से यूज किया तो वो मैं ही वाइब्रेशन को क्या करता है, ऊपर लेकर जाता है। मैं फला हूं, रोल हूं, पोजिशन हूं, वाइब्रेशन को नीचे लेकर जाएगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वाइब्रेशन को क्या करेगा, ऊपर लेकर जाएगा। तो आज की पहली पॉइंट, आपके पास पेन और पेपर आ गया? ये कुछ वो वाली पॉइंट्स है जो हमें वापस लेकर जाने हैं। और सबसे पहली पॉइंट है, वाइब्रेशन ऑफ माय हॉस्पिटल इज प्रायोरिटी। वाइब्रेशन ऑफ माय हॉस्पिटल, आप सब बहुत मेहनत करते हैं। प्रायोरिटी क्या होती है? बेस्ट डॉक्टर, विच मीन्स बेस्ट स्किल्ड, बेस्ट टैलेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट रिसोर्सेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी बेस्ट वाइब्रेशन वो प्रायोरिटी पे नहीं आया, कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं है। और आपने अभी ये एक्सपीरियंस कर लिया कि बिना कुछ किए आपको आकर पीसफुल फील हो रहा है। अभी तो जस्ट आए हैं, अभी तो रहना है। अब ये पीसफुल क्यों फील हो रहा है? क्योंकि जो यहां रह रहे हैं वो पीसफुल ही रहने का बहुत पुरुषार्थ करते हैं, तो पीसफुल ही रहने से वो पीसफुल वाइब्रेशन उन्होंने बना दिए। बाकी है तो नॉर्मल बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं। यहां से जैसे ही आप गेट से बाहर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे सड़क पे, वाइब्रेशन चेंज उसी शहर के अंदर। ये नहीं सोचना हम तो बॉम्बे में रहते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो इधर रहते हैं, हम तो उधर रहते हैं, वहां तो इतना स्ट्रेस होता है, वहां तो ये होता है। कितना भी हो, आपका वो जगह उसी शहर के बीच में होगा, लेकिन उस जगह के अंदर जो रहते हैं उनमें से अगर एक भी अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर लेता है तो उस जगह की वाइब्रेशन बदलना शुरू हो जाती है। आजकल हम ऑपोजिट पे चल रहे हैं, हम सब कुछ बाहर बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। और इसीलिए आप, मतलब हर एक नहीं रख रहा है, और क्योंकि हम नहीं रख रहे हैं, हमने कुछ वर्ड्स को नॉर्मल बोल दिया। तो हमने कहा स्ट्रेस इज नॉर्मल, और जब आप यहाँ से मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे और आप सबको जाके कहेंगे अब तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, कहाँ से आए? एंड वो आपको बोलेंगे यू आर नॉट नॉर्मल, आपको स्ट्रेस नहीं होता, इतना हमने उस वर्ड को क्या बना दिया, नॉर्मल, नॉर्मल। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, लेफ्ट साइड पे अनकंफर्टेबल, राइट हैंड साइड पे नॉर्मल, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, आप साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, आपको समाज को बताना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या होता है। आप हमें जो नॉर्मल बोलते हैं हम स्वीकार करते हैं, आप कहते हैं इतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो हम उसको स्वीकार करते हैं, आप कहते हैं इतना शुगर नॉर्मल, इतना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, 2 साल के बाद आप वो बदल के कुछ और नॉर्मल बोलते हैं, हम उसको भी स्वीकार करते हैं क्योंकि आपने बोला है। तो फिर आपका कर्म कितना इंपॉर्टेंट है, आपने कहा और समाज ने स्वीकार किया, एंड वंस सोसाइटी एक्सेप्टेड इट, सोसाइटी स्टार्टेड लिविंग लाइक दैट। गुस्सा करना नॉर्मल, इतना टाइम थोड़ी लगता है सोचने में, हाँ यार गुस्सा करना नॉर्मल, नो? आप जाकर बोलेंगे या सबको बताएंगे, वापस जाकर बताएंगे सबको वापस जाकर? जी कोई बात नहीं, एक दिन में अप्लाई नहीं होता, धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है। यहां ये क्राइटेरिया नहीं है पहले परफेक्ट बनना है फिर दूसरों को सिखाना है, खुद भी बनते जाना है शेयर भी करते जाना है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, पहले हम बनेंगे फिर दूसरों को सिखाएंगे, हमने जो सीख लिया वो सबके साथ शेयर करेंगे। कोई ये नहीं क्लेम करने वाला वापस जाके ओ मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये क्लेम करेगा वापस जाके कि गुस्सा करना हेल्दी नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ये तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो परमात्मा के महावाक्य है ये, आने वाला जो समय है आपकी दवाइयां लोगों पर काम करना बंद कर देंगी, वो इसलिए बंद कर देंगे मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आएगी, आप सोचेंगे कि इसको हील हो जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हील हो रहा, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि उसके मन की स्थिति उसको ठीक नहीं होने देगी। तो इवन इफ आई एम टेकिंग द बेस्ट मेडिसिन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, इफ आई एम वेरी वेरी ट्रबल्ड हियर और मेरे अंदर सिर्फ चिंता और फियर और एंग्जाइटी, ये प्रिडोमिनेंट मेरी इमोशन है, तो जिस स्पेस पे मेरी बॉडी को ठीक होना चाहिए वो नहीं होगा। और यही ऑपोजिट कि शायद मुझे ठीक होने के लिए 15 दिन लगने चाहिए, लेकिन अगर मेरा माइंड बहुत पीसफुल है, बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ फेथ है, तो मेरी बॉडी जल्दी ठीक होगी। इज दैट राइट? यस। डू यू अग्री दैट द माइंड विल प्ले अ रोल इन द हीलिंग? यस। एवरीबडी, एनीबडी हैज एनी डाउट इन दैट? एंड आप सब तो सारा दिन उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी देखते होंगे, है ना? तो आप सारा दिन ये एक्सपीरियंस देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए आप सोचेंगे इतने दिन में ठीक होना चाहिए, वो ज्यादा टाइम लगाएंगे, और कुछ के लिए आप सोचेंगे इतना दिन लगेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर सेम, हॉस्पिटल सेम, ट्रीटमेंट सेम, मेडिसिन सेम, डिजीज सेम, एवरीथिंग सेम, ओनली वन थिंग डिफरेंट, द माइंड। द माइंड इज डिफरेंट। इवन अगर आप हाइपोथेटिकली ले लो कि बॉडी सेम, इट इज द माइंड विच इज डिफरेंट। एक चीज आज हमारी हीलिंग में मिसिंग है, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द रोल ऑफ द माइंड इन हीलिंग। भारत की संस्कृति में तो ये कूट कूट के भरा हुआ है, जैसा मन वैसा तन, एज इज द माइंड सो विल बी द बॉडी। तो डिजीज क्रिएट कहां से हो रही है, डिजीज की हीलिंग कहां से होनी है, हम सारे फैक्टर्स उनको बता देते हैं। हम कहते हैं फूड, एक्सरसाइज, एयर, ब्रीदिंग, सब कुछ, हम उनको नहीं बताते योर माइंड। तो आज से जब हम यहां से वापस जाएंगे, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका कर्म ये बनता है कि आपको हर एक को बताना होगा, अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो पहले अपने मन का ध्यान रखना शुरू करो। आप सबको ये नहीं कहेंगे यहां से जाने के बाद, तुम चिंता नहीं करो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। फिर अगर वो ठीक नहीं आए ना, तो वो आपके पास आएंगे वापस। कुछ साल पहले एक बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, वो फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर से खुद गुजर रहे थे और उनको पता था कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं अभी, और उन्होंने उस समय पर हॉस्पिटल में बेड पे थे वो, और उस समय पर उन्होंने कहा, जब हम सब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, डू यू नो सिस्टर, हमने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी, हमने बोला कुछ नहीं, हम आपको ठीक कर देंगे, आप आ जाओ, हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको ठीक कर देंगे। ही सेड इट्स नॉट ट्रू, ही सेड इट्स नॉट ट्रू, ही सेड आधा काम हम करते हैं, आधा काम उनका माइंड करता है। मैंने कहा ये तो बताना चाहिए ना हर एक को, फिर बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? ठीक है, आप रेडी हैं आधा क्रेडिट उधर देने के लिए? आधा क्रेडिट कम होगा आपका। When you teach them that, automatically they will take care. Especially अब के समय में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन की स्थिति डे बाय डे क्या होती जा रही है, डाउन हो रही है, बीमारियां डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेट। सो डॉक्टर doesn't mean सिर्फ जो ट्रीट करने वाला है ना, डॉक्टर means वो जो सिखाने वाला है कि ठीक कैसे रहना है। तो बीमारी का कारण कहाँ है और बीमारी का सोल्यूशन कहाँ है, हीलिंग कहाँ है, तो इसको हम अब अपनी लाइफ की प्रायोरिटी जब खुद बनाएंगे ना, इसीलिए डॉक्टर को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, लेकिन एक हीलर को तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो चीज आप खुद करेंगे और आपको उसके एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, आपसे कितनों का भविष्य बदल जाएगा, आपसे कितनों का भाग्य बदल जाएगा। सो रेडी के द रोल ऑफ माइंड। अब किस किस का माइंड प्ले करता है एक पेशेंट की हीलिंग के अंदर, किस किस के माइंड का असर पड़ता है? फर्स्ट किसका माइंड? पेशेंट्स माइंड। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट बहुत क्लियर है। फर्स्ट किसका माइंड? पेशेंट्स माइंड। सेकंड, फैमिली केयर गिवर का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केयर गिवर घर का एनवायरमेंट बनाता है। तो अगर केयर गिवर स्ट्रेस्ड है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिंता कर रहा है, डर कर रहा है, तो इस हॉल का ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर इस हॉल में हमें पीसफुल फील हो रहा है, उस एनर्जी में हमें स्ट्रेस्ड फील होगा, और अगर मेरा मन स्ट्रेस्ड है, मेरा बॉडी हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और आप उनको कहते हैं ये आपको खाना है, ये गोली आपको खानी है, ये आपको एक्सरसाइज करना है, आपको उस पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना आधा कर्म गलत कर रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग देम द कंप्लीट ट्रूथ। आपको उस पर लिखना पड़ेगा कि आपको और आपके परिवार को एक शांत, शक्तिशाली, हैप्पी होम क्रिएट करना है। उस शांत वाले घर में ही आप जल्दी ठीक होंगे, नहीं तो यहां से जाओ अपने घर, दवाइयां सारी खाओ, लेकिन चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, झगड़ा करो, कैसे ठीक होगी बॉडी? हाउ इज इट गोइंग टू हील? फिर सर्जरी कराओ, उस ब्लॉकेज को हटाओ, थोड़े साल के बाद वापस आओ, फिर से ब्लॉकेज आ गई। क्यों आई? क्योंकि हमने वायुमंडल नहीं बदला, एनवायरमेंट नहीं बदला। द नीड ऑफ द आवर इज एवरी हाउस एनर्जी नीड्स टू चेंज। And for every house energy need to change, one person in every family needs to take responsibility कि घर की energy कैसी होनी चाहिए, शांति, ताकि कुछ करना ही नहीं है, जो आया उसको आते ही शांति फील हो रही है। तो यहां से जाने के बाद की priority, सबसे पहले हमारे घर की energy कैसी होनी चाहिए, ये यहां से आपको अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तीन दिन आपने वो सब कुछ पिक करना है। यहां से कहीं भी जाते हैं तो वहां की स्पेशलिटी लेकर आनी होती है ना, तो यहां से क्या लेकर जाएंगे? यहां तो कोई मार्केट तो है नहीं, कुछ खरीदना तो है नहीं, यहां से वो लेकर जाना है जो फ्री में मिलता है। शांति फ्री में मिलती है, खुशी फ्री में मिलती है, आज दुनिया, पूरी दुनिया ट्रैवल कर रही है खुशी ढूंढने के लिए। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाना। हाउ मेनी ऑफ अस वांट हैप्पीनेस? जरा एक मिनट हाथ उठाओ अच्छे से, 10 सेकेंड्स पकड़ के रखना, होल्ड एंड टर्न लेफ्ट एंड राइट एंड लुक, टर्न लेफ्ट एंड राइट, बैक फ्रंट एवरीथिंग एंड लुक। एंड यू नो व्हाट, अब अगर आपसे पूछा जाए क्यों आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कहेंगे नहीं सब ठीक ठाक ही है। क्यों फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं सब ठीक ठाक है। आपके हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं सब ठीक ठाक है। फिर खुशी क्यों चाहिए? खुश क्यों नहीं है? खुश क्यों नहीं है फिर? दिस इज अ चेंज दैट हैज कम इन सोसाइटी। अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती थी वो कहते थे कि आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि, देन दे विल से आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि सब कुछ ठीक है फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। और अभी तो पिछले 2 ईयर्स से वेर एवर आई गो, वेर एवर एनी प्रोग्राम, चाहे वो गांव में है, चाहे वो शहर में है, चाहे वो विदेश के सो कॉल्ड हैप्पी शहरों में है, क्योंकि यहां से बहुत लोग दूसरे देश जाते सोचते वहां खुशी मिलेगी, तो मैंने सोचा उस देश में भी पूछना चाहिए जाके कि वहां खुशी। एंड एवरीबडी ऐसे ही आपकी तरह 2 सेकंड में हाथ ऊपर करते हैं विदाउट थिंकिंग पॉजिंग के भाई आई एम हैप्पी और नॉट हैप्पी, मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं, कुछ सोचने का टाइम नहीं चल रहा है। अब आप ये समझिए ये आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हर पेशेंट जो आ रहा है वो हैप्पी नहीं है, और अगर वो हैप्पी नहीं है उसकी हीलिंग स्लो डाउन होने वाली है, तो इसीलिए हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि हेल्दी होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा। वैसे ये बताइए, जो हेल्दी होता है वो हैप्पी होता है, जो हैप्पी होता है वो हेल्दी होता है? जो हैप्पी होता है वो हेल्दी होता है या जो हेल्दी होता है वो हैप्पी होता है? अब अगर आप हैप्पी नहीं है मतलब आप हैप्पी का ऑपोजिट है। वैसे फोन पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, थको नहीं, एंजॉय, कुछ नया नहीं है। अगर आप हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब आप क्या है? ओहो ऐसे नहीं बोल रहा। पेशेंट्स माइंड, केयर गिवर्स माइंड, थर्ड माइंड, थर्ड माइंड किसका हीलिंग पर असर पड़ने वाला है? डॉक्टर्स माइंड। आपको लगता है आपका माइंड भी असर करेगा? आप बेस्ट डॉक्टर है, आपका इलाज परफेक्ट है, आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस को ठीक कर लेते हैं, फिर कुछ फर्क पड़ता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? इलाज तो फिर भी परफेक्ट होने वाला है। आपका माइंड असर करता है? हाथ उठाएं किस किस को लगता है। अच्छा पकड़ के रखना, अपना फोन निकालो, सेल्फी निकालो अपनी। अभी मेरा माइंड पेशेंट की हीलिंग में असर करने वाला है। इफ वी रियली टेक दिस वन थिंग बैक विद अस टुडे कि माय स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की स्थिति मेरे पेशेंट की हीलिंग में असर करने वाली है, फिर अपने लिए नहीं तो उनके लिए सही, हम अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज जिसका असर करता है वो है आपके साथ आपका सारा स्टाफ, तो वो नर्सेस हो, आपके जूनियर्स हो, आपको इंटर्न्स हो, हर एक जो आपके साथ है, हर एक जो एक हेल्थ केयर सेटअप में है उसके मन की स्थिति का असर हीलिंग पे कर रहा है। तो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अब कहाँ आनी है? रखे उंगली, अब फर्स्ट प्रायोरिटी किधर आ रही है? यहाँ। अब हम यहाँ नहीं रखते, अब हम यहाँ रखते हैं, यहाँ है माइंड, यहाँ, राइट? तो सबसे पहले फिर किसको चेंज होने की जरूरत है? क्योंकि आप उनको जाके नहीं बोल सकते डोंट गेट स्ट्रेस्ड, डोंट वरी, तो ही विल लुक एट यू द पेशेंट एंड से डॉक्टर साहब हाउ नॉट टू वरी, तो बोलेंगे हाँ आपकी बात तो राइट है लेकिन आप चिंता मत करना प्लीज, तो आपके शब्दों का उन पर असर नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे ये बोल रहे हैं पर ऐसे कैसे हो सकता है। आप उनको कहेंगे गुस्सा नहीं करना, तो कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे, मेरे घर में आपको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ मैं समझ रहा हूं, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा मत करना। तो कैसे असर होगा बात का? तो फॉर यू टू इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव पड़ना है उधर, नॉट सिर्फ उतनी देर के लिए जब आप उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रभाव जो उनका जीवन जीने का तरीका बदलते हैं। वन पर्सन चेंज इज नॉट वन पर्सन चेंज, वन पर्सन चेंज इज मैनी पीपल चेंज। क्योंकि अभी हमने हाथ उठाया कि आई एम नॉट हैप्पी, अगर या मुझे हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन अगर कुछ और साल बीत गए ना इसी तरह, तो वी विल स्टार्ट रेजिंग आर हैंड्स, आई एम अनहैप्पी। दुख दर्द उतना अति को चला जाएगा। हम जब स्कूल में थे तो स्ट्रेस वर्ड नहीं था ना माइंड का, राइट? नहीं था ना वर्ड। डॉक्टर भी बन गए लेकिन तो भी स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज किया एक बार भी, राइट? ज्यादा से ज्यादा टेंशन कभी कभी थोड़ी सी। तो ये हमारी लाइफ टाइम में है कि स्ट्रेस वर्ड नहीं था, स्ट्रेस आया, धीरे धीरे हर एक ने कहना कि शुरू किया आई एम स्ट्रेस्ड, फिर धीरे धीरे स्ट्रेस इज नॉर्मल, आज के बच्चे कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। हम अभी भी नहीं रुकेंगे तो दो साल बाद हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। आप हीलर हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है समाज को बदलने की। आप जो उनको बताएंगे वो सब करेंगे, राइट? तो हमें सबको बताना है कि हेल्दी रहने के लिए फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या चाहिए, हेल्दी रहने के लिए फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या चाहिए, सही सोचने का तरीका। आज लोग हेल्दी डाइट खा रहे हैं, कहते इतना हेल्दी खाया फिर क्यों बीमारी हुई? क्योंकि सिर्फ खाने पीने से शरीर नहीं बनता है, हर क्षण जो हम सोच रहे हैं, एवरी थॉट इज रेडिएटिंग टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। पांच मिनट चिंता कर लो शरीर पे असर पड़ रहा है। अभी तो नॉर्मली चिंता में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, स्ट्रेस्ड होकर भाग रहे हैं। एंड इट इज सो इजी टू फील पीसफुल। आप यहां आए एंड यू आर फीलिंग पीसफुल, क्योंकि हमारी इनेट नेचर शांति है। हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? तीन ऑप्शन है। हमारी थॉट्स आए, मैं क्रिएट करती हूं, मेरी थॉट्स का जिम्मेवार सिचुएशन है, या तीसरा दोनों जिम्मेवार हैं। आए दे बोथ, आए बोथ दे। इस हॉल में हर आंसर करेक्ट है, बस आंसर होना चाहिए अपने पास, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब सोचना जरूर है उसके ऊपर कि मेरी जो सोच है, मेरी जो इमोशंस है, इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई सिचुएशन और बोथ। इफ आई एम फीलिंग एंग्री हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई सिचुएशन और बोथ। इफ आई एम वरीड हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई सिचुएशन और बोथ। इफ आई एम हैप्पी हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई सिचुएशन और बोथ। क्योंकि अगर आप बहुत हैप्पी होंगे तो आपको कोई पूछेगा क्या बात है, मतलब कोई बात होनी चाहिए हैप्पी होने के लिए। जब आप यहां से ट्यूसडे जाएंगे वापस और आपका चेहरा देखकर कोई कहेगा क्या बात है बहुत खुश है, कहना खुशी मेरा स्वभाव है, हैप्पीनेस इज माय नेचर, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। एंड थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद वी विल रीच अ स्टेज, क्राइसिस है लेकिन हैप्पीनेस और क्राइसिस का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि क्राइसिस तो बाहर है और हैप्पीनेस कहाँ है? सोचने का तरीका है। तो हेल्दी होने के लिए जो फर्स्ट स्टेप हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी वोकैबुलरी ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी। आज फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़े हैं? क्योंकि हमने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं रखा और इमोशनल हेल्थ का कोई डॉक्टर नहीं है। तो इमोशनल हेल्थ कम होती गई क्योंकि हम इमोशनली डिपेंडेंट होते गए। गुस्सा क्यों आया? कहेंगे उसने ऐसा काम किया, गुस्सा तो हम बोलते जाए, हम वोकैब 3 दिन इज वोकैबुलरी चेंज, गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा तो चिंता हो रही है। देर इज ऑलवेज अ फिल इन द ब्लैंक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि। आज आप इतने खुश क्यों हैं? मेरे बच्चे के नीट एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। Why am I happy? Because fill in the blank। ये vocabulary is saying कि यहां जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन? This is emotional dependence। Dependence healthy होती है? Dependence healthy होती है? नहीं। तो सबसे पहली चीज जो हमें शिफ्ट करनी है, फिर आप सबको सिखाएंगे, इमोशनल इंडिपेंडेंस इज इमोशनल हेल्थ। इमोशनल इंडिपेंडेंस इज इमोशनल हेल्थ। अब एक मिनट आंख बंद करें। लास्ट जब गुस्सा आया था वो सीन को देख लेते हैं एक बार। रीप्ले द होल सीन ऑन योर माइंड। क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, कुछ भी जो जो हुआ, और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया। और उस समय जब रिएक्शन था तो ऑटोमेटिकली मेरा मन किसको ब्लेम कर रहा था। और अगर कुछ थोड़ी देर के बाद किसने मुझे पूछा, क्या बात है, इतना मूड खराब क्यों है, मैंने उंगली किस पे रखी थी। और अब उसी सीन को पकड़ के रखें, अगर यहां से जाने के बाद ट्यूसडे को वही का वही सीन फिर से आएगा, वही के वही लोग वही गलती फिर से करेंगे, शायद उससे बड़ी भी गलती कर लें, लेकिन इस समय आप डिटैच स्थिति में बैठे हैं, देन जस्ट सी कि अगर सिचुएशन सेम रहे, लोग और लोगों की गलती सेम रहे, डू वी हैव अ चॉइस ऑफ रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। क्या हम उसी सीन में एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप को करते हुए देखिएगा। आप अभी जो देखेंगे ना वो यहां कोडिंग हो रही है। रिस्पॉन्ड अनदर वे टू द सेम सीन, थिंक अनदर वे इन द सेम सीन। ओके, किस किस को लगता है पॉसिबल है रिस्पॉन्डिंग अनदर वे? This is emotional independence. Situation नहीं change हुई, तो यहां उंगली रखें, यहां जो चल रहा है अंदर है, वो अंदर है, right? मेरी thoughts कहां create हो रही है? अंदर create हो रही है, right? यहां the world can do anything to me. यहां सब गड़बड़ हो सकता है, कोई मुझे physically भी hit कर सकता है क्योंकि वो भी किसी की पावर है, कोई मुझ पर चिल्ला सकता है, कोई मुझे धोखा दे सकता है, एवरीथिंग कैन हैपन आउटसाइड, लेकिन क्या वो यहां घुसकर हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति हमारे अंदर घुसकर हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? यस नो? पक्का पक्का नो? क्या आपका बच्चा आपके माइंड में घुसकर आपकी थॉट क्रिएट कर सकता है? क्या आपका स्पाउस आपके माइंड में घुसकर आपकी थॉट क्रिएट कर सकता है? बोलेंगे तो अच्छे से पक्का हो जाएगा। पक्का? पक्का? तो अगर उनके साथ आए हो तो मुड़ो और उनको देखो कि आज से आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, खत्म, पावर ओवर। दिस इज इंडिपेंडेंस। हां जी, इट इज डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट? डॉक्टर बनना डिफिकल्ट है या शांत रहना डिफिकल्ट है? ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा? शांत रहना ज्यादा डिफिकल्ट है डॉक्टर बनने से? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? लाइफ के सारे मुश्किल काम आप कर चुके हो, यहां आप आए हो लाइफ का सबसे इजीएस्ट काम करने के लिए। सबसे इजीएस्ट काम, कोई भी चीज बहुत समय से की ना हो तो वो डिफिकल्ट लगती है। But it's not difficult, it's just that we didn't do it. It's not difficult, we just didn't do it. और जैसे ही उसको करना शुरू करेंगे, एक डॉक्टर बनने में सालों साल इतना पढ़े, दिन और रात जागे, फिर उसके बाद और पढ़े, फिर और पढ़े, और पढ़े, चलो पढ़ के बन गए, अब उसके बाद कौन सी मुश्किलें खत्म होंगी? अब सारा दिन रोज क्राइसिस हैंडल कर रहे हैं, कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल काम करते हैं। ये सिर्फ क्या करना है, सामने से कोई गलत व्यवहार कर रहा है, एक मिनट चुप रहना है सिर्फ। डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? तो सबसे पहली प्रैक्टिस आज से, जो हम सोचेंगे वही होगा। अगर आप डिफिकल्ट बोलेंगे तो डिफिकल्ट, तो वोकैबुलरी चेंज। इट इज हमारा माइंड जो बोलेगा वो होने लगेगा, तथास्तु हो जाता है। आपने बोला डिफिकल्ट, तथास्तु। आपने बोला इजी, तथास्तु। आपने बोला वेरी इजी, तथास्तु। अब आप सिर्फ बोलना ध्यान से, बस होना वही है जो हम सोचेंगे, होना वही है जो हम बोलेंगे। हमने सोचना और बोलना ध्यान से है। अभी जब आपने साइलेंट होकर, डिटैच्ड होकर देखा कि सिचुएशन सेम थी, आपने एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो क्या रिस्पॉन्स था वो जो अलग तरह से हुआ? व्हाट वाज डिफरेंट इन द रिस्पॉन्स? क्या किया आपने? एनीबडी, क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स किया आपने? आराम से बात की, वो ही बात की लेकिन एक अलग लहजे में बात की, डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। यू वी कैन से द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, राइट? वर्ड्स रिमेन द सेम, मैनर चेंजेस। तो गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा था उस टाइम पर? फिर गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा था? मैं। अब इस मैं को थोड़ी बार रिपीट कर लेते हैं। हु क्रिएट्स माई एंगर? इधर उंगली रखेंगे। हु क्रिएट्स माई एंगर? आई। हु क्रिएट्स माई हर्ट? आई। हु क्रिएट्स माई वरी? आई। हु क्रिएट्स माई स्ट्रेस? आई। हु क्रिएट्स माई हैप्पीनेस? आई। हु क्रिएट्स माई पीस? आई। एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। दिस इज फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल इंडिपेंडेंस। अब मेरे पास चॉइस है। एक बार मुझे ये समझ में आ गया कि क्रिएट मैंने करना है। आपने अपने ही घर में देखा होगा, आपने अपने ही हॉस्पिटल में देखा होगा, सेम सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की थॉट्स क्रिएट करते हैं। यस और नो? यस। सेम सिचुएशन है, सिचुएशन नहीं बदली। चलो हॉस्पिटल भी छोड़ो, अपने घर पे देख लो, एक ही बात आएगी, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। यस, किसके इस घर में? कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें सारे एक जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिचुएशन तो सेम है ना। अगर सिचुएशन क्रिएट कर रही होती इमोशन, तो एक ही सिचुएशन सबके अंदर सेम इमोशन क्रिएट करनी चाहिए थी। तो कोई बहुत परेशान होता है, कोई थोड़ा परेशान होता है, कोई शांत रहता है, और कोई तो लाइट रहकर उस बात को ही बदल देता है। सिचुएशन इज द सेम, तो हु इज द क्रिएटर ऑफ द इमोशन? आई। लेकिन जो परेशान हो रहा है वो क्या कह रहा है? बात ही ऐसी थी तो परेशान तो होना ही था। ये पावर जो हमने बातों को दे दी, उससे हमारी पावर क्या होने लगी? कम 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 कम। और जब बैटरी की शक्ति कम होने लग जाए यहां पर, तो जीवन के हर पहलू पर असर पड़ जाएगा। एक स्पिरिचुअल लॉ है, उसको लिख के रख लीजिए। संकल्प से सृष्टि बनती है। आर थॉट्स क्रिएट आर वर्ल्ड। दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ, इट्स ऑलवेज वर्किंग। आर थॉट्स क्रिएट आर वर्ल्ड। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो ये बैटरी है, उसको आप शाम को आज देखेंगे। इस बैटरी को हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम पावर कहें, लाइट कहें, कॉन्शियसनेस कहें, आत्मा कहें, शब्द अलग अलग है। वो बैटरी है, एनर्जी है। ये एनर्जी अगर कम होने लग गई, तो मन की स्थिति पर असर, शरीर के स्वास्थ्य पर असर, रिश्तों पर असर, काम पर असर, एनवायरमेंट पर असर। संकल्प से सृष्टि बनती है। और दूसरा लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। आर नेचर क्रिएट्स द वर्ल्ड। संस्कार से संसार बनता है, और संकल्प से सृष्टि बनती है। और तीसरा लॉ, संकल्प से सिद्धि होती है। एनी थॉट यू क्रिएट रिपीटेडली, इट विल बिकम अ रियालिटी, वो सिद्ध हो जाएगा। ये तीन लॉज को यूज करना है अब जीवन के अंदर। संकल्प से सृष्टि बनती है, माई थॉट्स क्रिएट माई वर्ल्ड, which means my body also gets influenced from here. तो इसलिए अगर हम पिछले 25-30 सालों में देखें, the world has changed. तो 30 साल पहले हमें स्ट्रेस वर्ड नहीं ज्यादा यूज होता था, फिजिक्स में ही था. डिप्रेशन तो एक वर्ड ही था, होता कैसा है वो पता नहीं था. ठीक है बात ये, राइट? कैंसर कितना होता था, हार्ट अटैक्स कितने होते थे और कौन सी एज में होते थे, डिवोर्स कितना होता था भारत में 30 years back. तो ये पूरी सृष्टि बदली है हमारी, सिर्फ एक ही जगह से. यहां मेरे मन की स्थिति अगर कमजोर होगी, मेरे शरीर पर असर पड़ेगा, मैं रिश्तों में रिएक्ट करूंगी, मेरे रिश्तों में असर पड़ेगा, मेरे काम करने के तरीके पर असर पड़ेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट अब्सॉर्ब्स आर वाइब्रेशंस. एनवायरमेंट हमारी वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करती है. आज पानी इतना उथल पुथल कर रहा है, हर रोज 2 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस पानी को शांति और शक्ति की वाइब्रेशन दें. प्रकृति पर असर पड़ता है, तो संकल्प से सृष्टि बनती है. हमें वापस सृष्टि को बदलने की मेहनत नहीं, संकल्प को बदलने का थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड विदाउट ट्राइंग टू चेंज द सेल्फ. But the equation is, my thoughts create the world. So how much ever I try to change the world, I will not be able to change the world unless I change the self. The self is the seed. ये बीज है. आप seed पर work करें, आपकी पूरी tree healthy होगी. लेकिन आप पूरी tree पर मेहनत करें और seed पर नहीं करें, आपकी tree healthy नहीं हो सकती है. कुछ ना कुछ problem, कुछ ना कुछ बात आती जाएगी. तो हमने ये 3 दिन निकाले हैं to work on the seed. सीड. लेकिन हम 3 दिन के लिए इस पर काम नहीं करेंगे, 3 दिन में इसको सीखकर फिर जीवन भर इसको प्रायोरिटी बनाएंगे. तो संकल्प से सृष्टि बनती है. तो आज से पहला संकल्प जो चेंज होगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एवरी इमोशन. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इमोशन, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर. कहीं भी उंगली बाहर नहीं, ऐसा हुआ क्योंकि नहीं, मैंने क्रिएट किया. वो कहेंगे लेकिन बात कितनी बड़ी थी. बात कितनी भी बड़ी हो, थॉट फिर भी हमने ही क्रिएट करने हैं. एंड हर बात में मेरे पास चॉइस है कि मुझे कैसी थॉट क्रिएट करनी है. सो फर्स्ट इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्लेम गेम की वोकैबुलरी फिनिश्ड. जैसे ही ब्लेम गेम की वोकैबुलरी फिनिश, आपके पास बहुत सारी ताकत आने वाली है. इवन अगर मैं कहूं उन्होंने ऐसा किया, मैंने गुस्सा क्रिएट किया, बट फिंगर मैंने किस पर रखा, मैंने क्रिएट किया, पावर कम्स बैक टू मी एंड देन आई वर्क ऑन चेंजिंग इट. लेकिन अगर मैंने कहा उन्होंने गुस्सा दिलाया, फिर तो खत्म. फिर तो विच मीन्स वो कुछ भी ऐसा करें तो बटन प्रेस होता है और मैं रिएक्ट. रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल मन का किसके हाथ में है? तो आज से अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ के रखना है. भले गुस्सा आए, वो एक दिन में नहीं जाने वाला है, लेकिन पहला स्टेप ऑफ चेंज होगा, ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया, आई हैड अ चॉइस. अपने मन को अलाउ ही नहीं करना, लेकिन उसने ऐसा बोला. अपने मन को कहना, उसने कुछ भी बोला, हमने क्या बोला? उसने जो बोला वो उसकी चॉइस, हमने जो सोचा वो हमारी चॉइस. वी आर नॉट जस्टिफाइंग कि दूसरा राइट था रॉन्ग था, वो तो अलग खेल है. मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला, मैंने जो किया, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरी चॉइस है. पक्का कर लें इसको, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे. पक्का? एनी सिचुएशन जहां आप बोलते हो कि नहीं वो मेरी चॉइस नहीं है, सिचुएशन की वजह से थॉट क्रिएट हो रही है. एनी सिचुएशन एट ऑल, कोई भी. तो रेडी है आज से ब्लेम गेम? कैपिटल लेटर में लिख दो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ब्लेम किसी भी बात के लिए. क्राइसिस होगा बाहर, ट्रेजेडी भी हो सकती है, लेकिन तो भी मेरी सोच तो मेरी क्रिएशन है। और जितनी मुश्किल सिचुएशन होती है उतनी मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? सिचुएशन जितनी मुश्किल है लाइफ की, तो उसमें मन की सिचुएशन, मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये भी लिख लो। तो आपके मन को पता होगा कि जितनी मुश्किल बात होगी उतना मुझे और पावरफुल होना है, लेकिन मुश्किल बात में पावरफुल होने के लिए मुझे सारा दिन की छोटी छोटी बातों में एनर्जी कंजर्व करनी है। तो अब से हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होने वाला है टू कंजर्व एनर्जी। हम आज इस वाइब्रेशन पर जी रहे हैं, लोअर एनर्जी पर, इसलिए हमने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए। हम यहां आए हैं इस एनर्जी पर पहुंचने के लिए। तो अब सारा दिन चेक करना है कौन सी मेरी इस समय स्थिति चल रही है। एम आई हियर? दोनों हाथ एक बार आगे रखें एंड वी विल डिसाइड विच वन वी आर गोइंग टू लिव आउट ऑफ। लेफ्ट हैंड विल बी लोअर एनर्जी, अनकंफर्टेबल इमोशन। राइट हैंड विल बी हायर वाइब्रेशनल, नॉर्मल। ये नॉर्मल की डेफिनेशन हर एक को बतानी है। अब घर जाके अपने बच्चों को बतानी है कि नॉर्मल क्या होता है, अपने हर पेशेंट को बताना है, अपने साथ काम करने वाले हर एक को बताना। नॉर्मल पता लगने से ही हम चेंज होने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कहेंगे गुस्सा करना तो नॉर्मल है, तो फिर उनको छुट्टी मिल गई। वो कहेंगे डॉक्टर ने कहा गुस्सा अंदर दबाना नहीं, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। मैं कहा हाँ, वो तो राइट बात है, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्रिएट करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इट इज अनहेल्दी, इट इज नॉट नॉर्मल। पीस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉट नॉर्मल। चलो रेडी, लेफ्ट पे जो अनकंफर्टेबल है, राइट पे जो हेल्दी है। सो नाउ वी आर राइटिंग, दिस इज इमोशनल डिजीज, दिस इज इमोशनल हेल्थ। ठीक है, ये डिसीज है। डिसीज मतलब डिस ईज। मेरा मन इस समय शांत है, इट इज एट ईज। अभी कोई ट्रिगर आया और मैंने रिएक्ट किया, आई शिफ्टेड टू डिस ईज। अगर मेरा मन डिस ईज की तरफ जाना बंद कर दे, मेरी बॉडी डिस ईज की तरफ जाना बंद कर देगी। इज दैट ओके? क्या आप चाहते हैं लोग डिजीज की तरफ जाना बंद कर दें? सच्ची सच्ची बोलो, ऐसे नहीं, पक्का पक्का? पहले इंटेंशन तो आपका होना चाहिए ना ऐसा वाला। एक प्योर इंटेंट रोज सुबह रखा करें, आज कोई बीमार ना पड़े, हर एक स्वस्थ रहे। ये नहीं सोचना फिर मेरा घर कैसे चलेगा। चलेगा, आप अपना कर्म अच्छा करो। आपका घर तो कलयुग के एंड तक बहुत ही अच्छा चलने वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बट आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन हमारा इंटेंट हमारा कर्म बनता है। हमारे इंटेंट में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हाँ ज्यादा लोग बीमार हुए ना, मेरा काम कितना अच्छा चला। नहीं, कोई बीमार कभी नहीं होना चाहिए, हर एक स्वस्थ रहना चाहिए। ये हमारा डीप रूटेड इंटेंट होना चाहिए, इतना इंटेंट। तो लेफ्ट हैंड इज इमोशनल डिस ईज, राइट हैंड इज इमोशनल हेल्थ। चलो रखते हैं स्ट्रेस, आप बोलते जाइएगा लेफ्ट या राइट, स्ट्रेस डिस ईज है ये। क्योंकि हर एक डॉक्टर को अब इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई अलग डॉक्टर नहीं है, तो आपको ही वो रोल प्ले करना है। स्ट्रेस इज ऑन द लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड पे क्या जाएगा फिर? पीस। पीस इज नॉर्मल, पीस चाहिए नहीं, पीस इज नॉर्मल। एंगर लेफ्ट, ऑपोजिट कंपैशन, एम्पथी। वरी कहां है? हम तुमसे इतना प्यार करते हैं बच्चा, चिंता तो होगी ही ना। चिंता चित्ता समान है। चिंता मींस कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट्स। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, कैसे होगा। जिसको आप प्यार करते हैं, अगर आपने उसके लिए चिंता की, तो आप ही उसको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। आप यहां बैठकर अपने बच्चे के लिए चिंता करें जो दूसरे शहर में है, आपकी नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंच जाएगी। ऑपोजिट ऑफ चिंता क्या है ऑन द राइट हैंड? केयर। केयर मतलब
जो होगा सब बढ़िया होगा, बढ़िया के अलावा मेरे बच्चे के साथ और कुछ हो ही नहीं सकता। सेंड दैट एनर्जी, गड़बड़ जो हो रहा होगा ना वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर यहां से भेजेंगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक होता हुआ भी हिल जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। जेलेसी मतलब हम वो सारे लिख रहे हैं जिसको हमने चेंज करना है 3 दिन के अंदर। इसको जेलेसी का ऑपोजिट क्या होगा? अब आप सोचो, अभी अभी आप खाली बैठे हो, आपके साथ वाले डॉक्टर पे भरपूर लोग बैठे हुए, क्या सोचना है उसके लिए? इतना स्माइल करेंगे ना आप जाने के बाद अगर आप खाली बैठेंगे और उधर बैठे। सिचुएशन बाहर है, मन की स्थिति का मालिक मैं हूं, मेरा कोई ऐसा कर्म बनना नहीं चाहिए जिससे मेरी एनर्जी क्या हो, डाउन होनी चाहिए। तो जेलेसी को क्या करेंगे, रिप्लेस किससे करेंगे? नॉर्मल, दिस इज अ डिस ईज। जेलेसी लोगों को शांत रहने देता नहीं, एक कांस्टेंट एक आवाज अंदर बोलती रहती है, ऐसे कैसे मेरे कैसे ऐसे कैसे। और अगर किसी को आपसे जेलेसी है तो उससे नाराज होना नहीं, क्योंकि वो बहुत दर्द में है। है आपसे जेलेसी किसी को? नहीं है किसी को आपसे जेलेसी? है ना? उनसे नाराज नहीं होना, क्योंकि वो जो बीमार है उनसे नाराज नहीं होना चाहिए कभी भी। दे आर इमोशनली डिस ईज। आज से ये पक्का करें, जो इमोशनल डिस ईज में होंगे हम उसके केयर गिवर हैं, हम उसके हीलर हैं। जेलेसी का ऑपोजिट कौन सा संस्कार है? इमेज नहीं, एम्पैथी थोड़ी चाहिए, जो वो तो सफलता में हमें हमें जेलेसी हो रही है। एक सेकंड में बैठकर, चाहे मन न भी कर रहा हो, आप एक सेकंड बैठकर उनको अच्छी सी ब्लेसिंग भेजे उनकी सफलता के लिए। ये जो मन है ना, इसको इस रोड पे जाने की आदत पड़ी है, एंड उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट, सोच, मीडिया, बहुत कुछ, लेकिन वो इस तरफ बहुत टाइम से जा रहा है, जाते जाते वो उसकी नेचर बन गई है। हमें उसको जेंटली क्या करना है, जेंटली क्या करना है, जिसको आपकी मेडिकल लैंग्वेज में आप कहते हैं न्यूरल पैटर्न जो इस तरफ क्रिएट हो गया, उसको थोड़ा इस तरफ लेकर जाना है। इट विल ओनली स्टार्ट विथ कॉन्शियसली क्रिएटिंग अ राइट थॉट। और अगर मन में वो थॉट नहीं भी क्रिएट हो रही है, एक पेपर पेन लें और वो राइट थॉट लिखें, उसको लिखें, लिख लिख कर जो इस डायरेक्शन में जा रहा था उसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्योंकि जेलेसी मेरी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है। राइट है बात? राइट है ना बात? तो जेलेसी का ऑपोजिट होगा ब्लेसिंग्स देना। कॉन्शियसली बैठकर उनको ब्लेसिंग्स दें कि आपको ढेर सारी दुआएं आपकी सफलता के लिए। मन कहेगा क्यों, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं? मन को बोलो शांत, अभी हम कुछ और कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे अपने बारे में, बाद में बात करेंगे। कॉन्शियस, इट्स जस्ट अ वोकैबुलरी। सोच एक भाषा होती है, कौन सी भाषा में बात करना है? दूसरों को नीचे गिराने की भाषा में बात करना है? दूसरों के घर आई हुई सफलता से प्रॉब्लम हो रही है? सफलता एक एनर्जी है, सक्सेस इज एनर्जी। सपोज सक्सेस उनके घर जा रही है और मैं कहूं कि सक्सेस उनके घर जा क्यों रही है, तो मुझे तो सक्सेस से ही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आई एम क्वेश्चनिंग सक्सेस। और अगर मैंने सफलता पे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए तो शायद सफलता मेरे घर आने का मूड चेंज कर ले अपना। तो अगर सफलता उनके घर जा रही है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। किसी को भी कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा, सबको सब कुछ अपने कर्मों से मिल रहा है। लेकिन जेलेसी क्रिएट करके हम अपने कर्म की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, नीचे करते हैं। लेकिन वो जेलेसी भी बहुत वायुमंडल की एनर्जी से हमारे अंदर क्रिएट हो रही है, फटाफट से चेंज हो जाएगी। बस पेपर पेन लें, उनका नाम लिखें और उनके लिए ढेर सारी दुआएं। बोला आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। अनहैप्पी होके भी लिखना आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू, माइंड चेंज होने लगेगा, माइंड चेंज होने लगेगा। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जेलेसी यहां, ब्लेसिंग्स यहां। ईगो, ईगो कहां? दिस इज। ईगो का ऑपोजिट ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। क्रिटिसिज्म, डिजीज, अप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन मीन्स झूठी तारीफ नहीं, अप्रिसिएशन मीन्स हर एक के अंदर कोई एक विशेषता है उसके बारे में सोचें और बात करें, क्योंकि कमजोरी उनकी है, निंदा यहां चल रही है. ये मेरे निंदा करने से उनका नुकसान नहीं होने वाला है, मेरी निंदा करने से किसका नुकसान होने वाला है, मेरा. वी आर नॉट सेइंग दे आर परफेक्ट, बट मी क्रिटिसाइजिंग देम इज डिप्लीटिंग माय एनर्जी. मेरी वाइब्रेशन नीचे जा रही है. आई एम अ हीलर, आई हैव टू रेडिएट एट द हाइएस्ट एनर्जी. तो क्रिटिसिज्म ऑपोजिट अप्रिसिएशन. कंप्लेनिंग, शिकायत करते रहना, ये ऐसा क्यों, इसको ऐसा नहीं, वो वैसा क्यों, वो वैसा क्यों, वो वैसा क्यों. शिकायत वाइब्रेशन को कहां लेकर जाएगा, डाउन. शिकायत का ऑपोजिट शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड को अपनी वोकैबुलरी बना लीजिए, चलते फिरते शुक्रिया करते रहिए. हर चीज का शुक्रिया, हवा का शुक्रिया, पानी का शुक्रिया, इस माइक का शुक्रिया, इस हॉल का शुक्रिया, इस शरीर का शुक्रिया, अपने मन का शुक्रिया, परमात्मा का तो शुक्रिया, यहां आप आए प्रकृति का शुक्रिया. आपको पता नहीं है दो दिन पहले यहां क्या था. आप अगर वीडियो देखेंगे यहां दो दिन पहले, आप टिकट कैंसिल करके घर ही बैठ जाते. दिखाई नहीं हमने किसी को. सड़क टूट गई, पानी इतना नॉन स्टॉप, कोई चांस ही नहीं था ये प्रोग्राम यहां होने का. ओनली टू डेज बैक. वो अलग चीज है, दैट इज नॉट शिकायत, दैट इज नॉट कॉल्ड शिकायत. शिकायत मीन्स माइंड ग्रम्बल करता नहीं रहता, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वैसा क्यों कर रहे हैं. ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग बींग परफेक्ट एंड देन गिव फीडबैक. फीडबैक एंड सजेशन इज नॉट शिकायत. कंप्लेनिंग एक नेचर हो गई है, संतुष्टता नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है. कंटेंटमेंट. और कोई संस्कार जो डिजीज है, हेट्रेड. ओ, वो तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा. हाँ, अटैचमेंट तो भूल ही गया. यस, अटैचमेंट कौन सी साइड पे आएगा, अटैचमेंट कौन सी साइड पे आएगा, मोह. अटैचमेंट. एंड अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं होता है, अटैचमेंट अपने आइडिया से होता है, अटैचमेंट अपने रोल एंड पोजिशन से होता है, अटैचमेंट ऑफ मी बीइंग राइट से होता है अटैचमेंट. एंड ऑफ कोर्स लोगों से तो अटैचमेंट होता ही है, साधनों से भी अटैचमेंट होता है. कभी देखना, अगर आपकी गाड़ी पे डेंट लगे तो आपको तकलीफ होती है, अगर तो अटैचमेंट है वो. एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर माइंड, यू आर अटैच टू दैट थिंग, है ना. फोन पर अगर स्क्रैच आए तो आपको तकलीफ होती है, तो आप फोन से भी अटैच है. करके देखना है अभी, फेंक के होती है कि नहीं तकलीफ. It's only one thought. Everything will change in one thought. Phone पे टूट गया, हाँ टूट गया, ठीक कर लेंगे, नया ले लेंगे, full stop. ऐसे कैसे, ओ टूट गया. Now just see, just जैसे ये thought create की phone टूट गया, body पर असर पड़ गया. शरीर पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा. हर thought शरीर पर असर कर रही है. कैसे टूट गया, ऐसे कैसे टूट गया, अभी तो नया ही लिया था, उतनी देर में शरीर टूट रहा है. हम जो कह रहे हैं, आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, इतने इलाज आ गए, इतनी लाइफस्टाइल आ गई, इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, इट इज हियर, इट इज हियर. क्योंकि नॉर्मल थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. कभी कभी स्ट्रेस, बॉडी कैन टेक इट. कभी कभी एंगर, बॉडी कैन टेक इट. कभी कभी नॉट कंटेंटेड इन लाइफ, बॉडी कैन टेक इट. बट लिविंग इन दैट वाइब्रेशन, बॉडी कैन नॉट टेक इट. कैसे लेगा शरीर, कैसे लेगा शरीर. तो अटैचमेंट को हम शाम को देखेंगे रिश्तों के टॉपिक पे. बट अटैचमेंट क्या क्रिएट करता है, दर्द, दर्द. तो अब ये आप लिस्ट को थोड़ी गैप छोड़ना, और आपको जैसे जैसे जो संस्कार याद आता रहे, आप लेफ्ट और राइट पे उसको लिखते जाइएगा. और फिर हम बहुत क्लियर हैं कि एज अ हीलर हमें अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना है, तो हमें कौन सी साइड से ऑपरेट करना है, राइट हैंड साइड, दैट इज सर्टन. एंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ब्लेम गेम खेलने वाले नहीं हैं, नहीं है. और वो उसको फिर हम अगले 3 दिन में तो बहुत डिटेल में देख रहे हैं, तो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है. तो फर्स्ट चीज क्या, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड चीज क्या, नॉर्मल क्या है वो पता है, क्योंकि अभी यहां आने तक तो हम बोल रहे थे उसने किया ऐसे, गुस्सा आना तो नॉर्मल है ना, वो लैंग्वेज चेंज. तो पहले नॉर्मल की वोकैबुलरी चेंज, दूसरा ब्लेम गेम की वोकैबुलरी चेंज, तीसरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वोकैबुलरी उठाएंगे कि ये गुस्सा मैंने क्रिएट किया, ये चिंता मैंने क्रिएट की, ये हर्ट मैंने क्रिएट किया, ये दर्द मैंने क्रिएट किया. और अगर मैंने क्रिएट किया तो कितनी देर उस मोड में रहना है, वो भी चॉइस किसकी है, वो भी चॉइस किसके है. पहले किस पे डिपेंडेंसी, वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगे, वो आके सॉरी बोलेंगे तो फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगे, फिर वो आके सॉरी भी बोलते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं अभी भी आपने फील नहीं किया. बोले बोले मैं सुबह से 4 बार सॉरी बोल दिया, अभी तक तुमको फील नहीं हो रहा कि मैं सॉरी बोल चुका हूं. क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि अभी तक हमें ठीक नहीं फील हो रहा. तो जब वो हमें जिस टाइम ठीक, हाँ अब आपने रियलाइज किया. बोले नहीं मैंने तो सुबह ही रियलाइज कर लिया था. नहीं आपने अब रियलाइज किया, क्योंकि अब मुझे. तो डिपेंडेंसी की वोकैबुलरी बहुत एंटैंगल्ड हो गई है कि आप कारण है मेरी तकलीफ का और आपको ही कुछ करना पड़ेगा जिससे आई विल बी फाइन. ये गेम खेलने में भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रोवाइडेड आपके घर में कोई एक जना हो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, तो बाकी लोग ब्लेम गेम खेल सकते हैं. लेकिन जब घर में हर एक ब्लेम गेम खेल रहा होगा तब फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होगी, और उसका कॉम्प्लिकेशन का असर आपको आपके हॉस्पिटल में आपके पेशेंट्स के अंदर दिखाई दे रहा है. तो 3 वोकैबुलरी कौन सी चेंज हो गई, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा नॉर्मल. कोई भी लोअर एनर्जी को नॉर्मल नहीं बोलना है आपने, आप बोलेंगे तो समाज बोलता है फिर. और तीसरा ब्लेम नहीं करना है, बड़े से बड़ी अभी ये छत गिर जाए, ये हॉल टूट जाए, बट अगर मैंने चिंता की वो फिर भी मेरी ही क्रिएशन है, वो फिर भी मेरी ही क्रिएशन है. तो हर क्षण हमारे पास चॉइस है. अब उस लॉ को लेते हैं जो हमने 3 दिन फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा होता जाएगा, वैसी हमारी सृष्टि बनती जाएगी. अब आप एक हीलर हैं, ये आपकी डेस्क है, ये आपकी टेबल है, हर 10 मिनट के बाद आपके अक्रॉस द टेबल कुछ लोग आ रहे हैं, क्या वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में आ रहे हैं? नहीं. अगर वो हायर वाइब्रेशनल पे होते तो बीमारी आती ना, और अगर अब बीमारी आ गई है तो चिंता और बढ़ गई है क्योंकि अब बीमारी आ गई है. सो एवरीवन वॉकिंग इनटू योर रूम इज इमोशनली इन पेन, नॉट जस्ट फिजिकली डिजीज्ड. हमें लगता है बीमार लोग आ रहे हैं, बीमार लोग आ रहे हैं लेकिन खुश लोग नहीं आ रहे हैं. तो आपका जो प्रोफेशन है वो वाइब्रेशनली बहुत रिस्की है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद आप किसको मिल रहे हैं, आप वाइब्रेशनली लोअर. अगर किसी का प्रोफेशन है सारा दिन अपने लैपटॉप के साथ काम करना है, सेफ सेफ, कोई एक्सपोजर ही नहीं है वाइब्रेशन का. लेकिन आपका प्रोफेशन वाइब्रेशनली सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपके पास बहुत कम लोग हैप्पी आ रहे हैं. तो अब आप सोचिए, यहां बैठे हैं, हर 10 मिनट के बाद आप 2 लोगों को मिल रहे हैं, 3 लोगों को मिल रहे हैं, वो 2-3 लोग थोड़ा दुख दर्द परेशानी में आ रहे हैं, आपका एक्सपोजर क्या है सारा दिन, लोअर एनर्जी. तो लिटरली आप इस कैंपस की ऑपोजिट एनर्जी में जीते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सेटअप की वही एनर्जी बन जाती है. तो आपका जो स्ट्रेस है ना, वो आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं होता है. आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं अपने काम में, आप आधी रात को नींद में उठ के आके भी सर्जरी कर सकते हैं. आपका जो स्ट्रेस है वो इसलिए है कि आपकी जो वायुमंडल है, जैसे यहां आकर आपको पीसफुल होना है विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऐसे ही हॉस्पिटल रोज जाने से यू कैन फील स्ट्रेस्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग. क्योंकि वो वहां के वायुमंडल में है। तो फिर क्या करें, हॉस्पिटल तो हमें रोज ही जाना है, इसका मतलब हमें रोज कुछ ऐसा करना होगा कॉन्शियसली जिससे हम अपनी वाइब्रेशन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। हम बस सुबह उठ के तैयार होकर ऐसे नहीं जा सकते, जैसे आग बुझाने वाला ऐसे ही नहीं जा सकता आग बुझाने के लिए, उसको पहले सेफ्टी का वो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। जैसे आप कोविड के टाइम वो पीपी किट पहन कर जाते थे, अगर नहीं पहना तो उनकी इन्फेक्शन हमारी, तो अब कौन सा किट पहन कर जाएं जिससे उनकी इन्फेक्शन हमारे तक नहीं आनी चाहिए। कोविड में कैसे वो प्लास्टिक शीट होती थी बीच में, तो प्लास्टिक शीट होने से क्या 99% वो इन्फेक्शन वहीं की वहीं रहेगी। अब एक और शीट आनी है बीच में जो आंखों से दिखाई नहीं देगी, वो कौन सी शीट आनी है अब बीच में, दूसरे की लोअर एनर्जी से आपको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, आपकी हायर एनर्जी। इसीलिए समाज में हर एक को मेडिटेशन की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है दर्द के साथ। नॉट दर्द ऑफ बॉडी, दर्द ऑफ माइंड। दर्द ऑफ बॉडी का असर आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन दर्द ऑफ माइंड का असर आपके ऊपर होगा। प्लीज टेल योरसेल्फ, इस वाइब्रेशन में आकर बिना कुछ किए अगर शांत फील हो सकता है, तो इसके ऑपोजिट वाइब्रेशन में जाके बिना कुछ किए स्ट्रेस और परेशानी का असर हो सकता है। तो मुझे अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली क्या करना होगा, ऊपर उठाना ही है। तो अपनी स्टेटमेंट लिख लें, मेडिटेशन इज अ कंपल्सरी डेली पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये अपना ब्लेम गेम छोड़ दें कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, इतना बड़ा धोखा अपने आप से न करें। जैसे आप ग्लव पहने बिना किसी को नहीं छुएंगे, जैसे किसी को छूने के बाद आप हाथ सैनिटाइज करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे किसके पास टाइम है हर थोड़ी देर के बाद हाथ धोने के लिए। आपको ये पता है कि अगर आपने हाथ नहीं धोया तो उनकी इन्फेक्शन आपकी और आपसे वो अगले की, नेक्स्ट पर्सन जिसको आप हाथ लगाएंगे। तो कितने भी आप बिजी हो, क्राइसिस हो आपके सामने किसी की सर्जरी का, आपने ग्लव पहनना ही है, हाथ धोना ही है। यू नो एवरीवन विल से आई डोंट हैव टाइम। तो इसी तरह मन की वाइब्रेशन अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं की तो उनकी वाइब्रेशन आपकी और फिर आपकी वाइब्रेशन आपके अगले पेशेंट की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शाम को घर जाके आपकी वाइब्रेशन आपकी फैमिली की। कोविड में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती थी कि हमें हो गया तो हमारे साथ घर ना चला जाए, होती थी ना ये थॉट। तो यही उतना ही ध्यान, चिंता नहीं लेकिन उतना ही ध्यान कि सारी ये वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करके मेरे साथ घर चला जाएगा शाम को। तो मेरे पास मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ा अपने आप के साथ क्या है। एक्चुअली तो फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल स्कूल से ही आपकी लाइफस्टाइल में आना चाहिए था। इट हैज टू कम फ्रॉम फर्स्ट डे कि सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि दूसरों का ध्यान रखने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना है, बहुत ऊपर उठाना है। इससे दो चीजें होंगी, दूसरे की एनर्जी आपको नीचे नहीं खींच सकती लेकिन आपकी एनर्जी उसको, बात करें आप इधर और वो इधर, अगर हम इधर इधर हैं थोड़े से, हम उनके जितना भी दर्द में नहीं है लेकिन हम थोड़े से बेटर हैं, लेकिन हम भी अपने स्ट्रेस एंगर पे चल रहे हैं, तो इनकी वाइब्रेशन हमें असर करेगी। फिर 10 मिनट के बाद नेक्स्ट आएगा, असर करेगी। फिर 10 मिनट के बाद नेक्स्ट आएगा, फिर असर करेगी, तो ये नीचे जाएगी। इसीलिए हेल्थ केयर प्रोफेशन में इतना ज्यादा बर्नआउट है। क्यों है? एक ऐसा प्रोफेशन जो सारा दिन दुआएं कमाता है, इतनी दुआएं तो कोई भी नहीं कमाता, नहीं कमाता ना। तो अगर कोई सारा दिन दुआएं कमाए, दे शुड बी फ्लाइंग इन हैप्पीनेस एंड पीस, लेकिन एक्सपोजर टू पेन है। तो एक्सपोजर टू पेन से अपने आप को क्या करना है, अपने आप को क्या करना है उस एक्सपोजर टू पेन से। तो अगर आपने रोज ऐसे जीना शुरू कर दिया तो लोअर एनर्जी तो आपको असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी हायर एनर्जी उनको असर करेगी। आप इस कैंपस की वाइब्रेशन का जीता जाता सैंपल होंगे, तो आपके संग में जो आएगा वो क्या फील करना शुरू कर देगा, आपका जो कमरा होगा ना हॉस्पिटल में, आपका कमरा इस एनर्जी पे रेडिएट करना शुरू करेगा क्योंकि आप पीसफुल होंगे। तो आपके कमरे में कोई आकर बैठेगा तो उसको कैसा फील होगा? नाउ राइट दिस एज योर नेक्स्ट होमवर्क। एनी वन कमिंग टू मीट मी, चाहे वो घर पे आपसे कोई मिलने आ रहा है फ्रेंड्स, या आपके हॉस्पिटल में, आपकी ओपीडी में, या कहीं भी आपको कोई मिलने आ रहा है, जो आपसे मिलेगा उसको शांति, शक्ति और खुशी का एक्सपीरियंस होगा, एग्जैक्टली जैसे आपको आज यहां हो रहा है, लाइट फीलिंग। अगर किसी पेशेंट को आपसे मिलकर लाइट फील हो जाए, उसके बाद उसका इलाज बेटर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आपकी दवाई जल्दी असर करेगी कि नहीं करेगी? वो जल्दी घर जाएगा कि नहीं जाएगा? एडमिट अगर हो गया आपके पास, वो जल्दी घर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप लाइट हो गए, जाएगा ना घर? जाना चाहिए ना जल्दी घर कि रहना चाहिए ज्यादा? क्या रखना है, भेजना है घर जल्दी या रहना चाहिए? घर भेजना है। सो राइट इट, इफ आई एम लाइट, दे विल बिकम लाइट, दे विल हील। वो आपसे मिलेंगे, अभी तो दवा खाई भी नहीं है, दवा का नाम भी नहीं पता है, कहेंगे डॉक्टर साहब बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां आकर। हम बाकी सब चीजों पे ध्यान रखते हैं, आप अपने अवार्ड्स को डिस्प्ले करते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट्स को बोर्ड पे लगाते हैं, आप दूसरों के थैंक यू कार्ड दिए हुए वो भी लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो आपके पास आ रहा है अपनी पूरी रिसर्च करके, उसने आपको अपना डॉक्टर चुना है, वो सब कुछ हटा दो, मतलब लगे रहने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। बट व्हाट इज गोइंग टू डू इज, व्हेन आई मीट यू, इफ आई फील गुड, आई नो आई एम विद द राइट पर्सन। फिर कितना भी समाज मुझे बोले नहीं नहीं वहां ऐसे होता है उस हॉस्पिटल, बोलो कुछ भी सब लोग बोले, आई नो आई एम विद द राइट पर्सन। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से होगा और किसी चीज से नहीं होगा। वो हल्का फील होना, और हल्का जब हम फील करते हैं हम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं, हम ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इस समय लोग बहुत परेशान स्थिति में आ रहे हैं, और जो जितना परेशान होता है वो ज्यादा बात करेगा, ज्यादा प्रश्न पूछेगा। आप चार बार आंसर करेंगे उसको फिर भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत शोर चल रहा है। जब यहां पर शोर चलता है बातें समझ में नहीं आती हैं, आपका साइलेंट माइंड उनके माइंड को साइलेंस करना शुरू करेगा। आप पूछेंगे उसके बाद कि कुछ और पूछना है आपको, कहेगा नहीं मुझे अभी कुछ पूछना नहीं है, आई एम फाइन, संतुष्ट। आपकी लाइटनेस दूसरे को संतुष्ट करेगी। वो कहेगा मैं आपसे मिलने से पहले बहुत क्वेश्चन सोचकर आया था, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पूछना है, दैट्स इट। वो सिर्फ और सिर्फ एक साइलेंट माइंड कर सकता है। राइट हैंड पे जो हमने संस्कार लिखे हैं वो हमारे माइंड को साइलेंट रखते हैं, लेफ्ट साइड पे जो हमने संस्कार क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे शोर मचा, शोर मतलब ओवर थिंकिंग माइंड। चिंता करेंगे तो कितनी थॉट्स क्रिएट होती है, गुस्सा करेंगे तो कितनी थॉट्स क्रिएट करती हैं। एक सेकंड में क्षमा करेंगे, वन थॉट ओवर, साइलेंट माइंड, साइलेंट माइंड। शिकायत करेंगे कितनी थॉट्स, एक शुक्रिया की थॉट, साइलेंट माइंड। तो मेडिटेशन का लक्ष्य है साइलेंट माइंड क्रिएट करना, ठीक है? इजी इजी, वो भी लिख दीजिए, वो भी बोलना है, इट्स वेरी इजी। इजी बोलेंगे, इजी बोलते बोलते है ही बहुत इजी, एक्चुअली है ही बहुत इजी, बहुत इजी है। आप जितने लोगों को आज मिलेंगे इस मंच पर, बहुत सारे आपकी तरह ही डॉक्टर्स हैं और आपकी तरह ही सुबह से रात प्रैक्टिस भी करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस करते हुए, इतने पेशेंट्स को देखते हुए, उसमें से टाइम निकालते हैं सेवा करने के लिए भी। पर उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि सब कुछ करते हुए उन्होंने अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटी पे रख लिया है। अब इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर माइंड टॉप ऑन प्रायोरिटी। इस समय दुनिया के हालात जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि माइंड को बिल्कुल नीचे की प्रायोरिटी बना दी, टोटल उस तो प्रायोरिटी ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी को बोलो मेडिटेशन करो थोड़ी देर, कहते सुबह सुबह ऐसे खाली बैठ जाएंगे, ऐसे इतनी देर में तो चार ईमेल आंसर हो जाएंगे, इतनी देर में तो दो फोन कॉल हो जाएंगे, तो दे फील खाली बैठना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। And that is why they are struggling with time so much. एक और वर्ड आज अपनी वोकैबुलरी से चेंज करिएगा. आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम. ये लाइन सही नहीं है. आपने हर बार जब ये बोलना है आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, आप अपने शरीर को एक मैसेज दे रहे हैं, समय नहीं है. आपकी हर सोच आपके माइंड तक नहीं रहती है ना. हमारी हर सोच सबसे पहले ये सुनता है. किस किस को दूसरों की वाइब्स फील होती है, फील होती है ना, दूसरे की वाइब्स. इसी तरह आपके शरीर को सबसे पहले आपकी वाइब्स फील होती है. तो ध्यान से बोलना है, मेरा शरीर सुन रहा है. माय बॉडी इज लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग एंड देन माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट आई एम सेइंग. सो चेंज, आई एम इजी एंड आई हैव मोर टाइम देन आई नीड. जितना समय चाहिए उससे तो मेरे पास बहुत ज्यादा है. आप सिर्फ 10 दिन इस लाइन को बोलिएगा, बिना फील करिए बोलिएगा, और 15 दिन के अंदर आपको फील होने लग जाएगा कि आपके आप और टाइम का रिश्ता बड़ा अच्छा बन गया है. वो हम शाम को देखेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है इस समय में समय के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना. समय ऑल्सो इज एन एंटिटी, इट्स एन एनर्जी, एंड इफ यू कीप सेइंग आई डोंट हैव टाइम, देन टाइम एंड यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल. तो ये लिख लीजिए अपना संकल्प, समय और मेरा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है. आई एंड टाइम गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल. तो समय हमेशा आपको सहयोग देगा. आपके जीवन में हर चीज समय अनुसार नहीं, समय से पहले होती जाएगी, क्योंकि समय और आपने एक रिश्ता बनाना है. So time and when we keep saying I don't have time, then time and me don't get along well, because I don't have time. So I have lot of time. Time and me get along extremely well. Seedha hokar baithe ek minute. Apne right hand ke sanskaron ko repeat kar lenge silence mein baithkar. Phir se center of the forehead dekhna hai apne aap ko. I the energy, main shakti, main atma, every thought is my creation. I am the master. And I'd say only and only high vibrational thoughts, only and only normal, healthy thoughts. I am emotionally independent. इसको आज बार बार दोहराएंगे. I am emotionally independent. हर सिचुएशन में, आज बीच बीच में अपनी लाइफ की सिचुएशंस देखते रहना और उसमें अपनी सोच को बदलते जाना. मेरी सोच उस सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इट्स माय चॉइस. एंड उसको लिखते जाना, उसको लिखते जाना है. अभी आप साइलेंस में बैठेंगे, सभी मेहमान मंच पर आएंगे, तब तक आप बिल्कुल यूज दिस टाइम, मेक योर नोट्स, राइट कौन सी सिचुएशन की थॉट चेंज करनी है, और उस सही सोच को लिखना शुरू करें. पहली बारी में नहीं आएगा, 3 दिन में हमारे को सब आ जाने वाला है. वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन 3 डेज. लेकिन अपना नोट करना शुरू करें कि मेरी लाइफ में कौन सी सिचुएशन है, कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए मुझे अपनी सोच को बदलना है, और वो जो लिस्ट ऑफ संस्कार बने हैं उसमें से चेक करें कि मेरे पास कोई ऐसा संस्कार है जो हेल्दी नहीं है. फिर उस पर आज हम शाम को फिर वर्क करेंगे. तो 5 मिनट्स बाय द टाइम दे सेट एवरीथिंग ऑन स्टेज, डोंट मूव, यूज दिस टाइम, डू द इनर वर्क एंड राइट इट आउट. उसको लिखें अपने आप के लिए. ओम शांति.